ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
நங்காரானா बंधन से मुक्ति का साधन नहीं कहा जाता है, क्योंकि आप बड़े गहराई में बंधे हुए हैं, समझे ना। आपको उस बंधन का पता भी नहीं है कि हम कहां बंधे हैं। हम बाहर के वस्तुओं से बंधन मानते, परंतु बाह्य वस्तु आपको कोई नहीं बांधती है, ध्यान रखो। बाह्य वस्तु तुम्हें कोई बांध नहीं सकती है, तुम अपने ही बंधन से बंधे हुए हैं, इसलिए अपने ही बंधन से तुम्हें छुटना है, और ये केवल भक्ति छुड़ा सकती है, समझे ना। और कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भजन भक्त भजन भक्ति होना चाहिए, भजन पुण्य नहीं होना चाहिए, भजन धर्म नहीं होना चाहिए, भजन सत्कर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए भजन में ध्यान रखना चाहिए, समझे, हमारा भजन क्या बन रहा है। यदि हम परमात्मा से समर्पित है, परमात्मा के बनकर के हम भजन कर रहे हो, तो निश्चित आपका भजन भक्ति बन रहा है। मंदिर में बैठने का अर्थ परमात्मा का बनना कदापि नहीं है। जितने पुजारी होते हैं ना, हम देखते हैं, हमारे विले पार्ले के पुजारियों को मैं देखता हूं, मंदिर में रहने का अर्थ परमात्मा का बनना नहीं है। तुम जंगल में रहो, बाजार में रहो, दुकान में रहो, तुम कहीं भी परमात्मा का बन सकते हो, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है। ये तुम्हें बोध हो जाएगा तो तुम कहीं भी परमात्मा का बन सकते हो, परंतु तुम तो परमात्मा को मंदिर में देखते हो, एक वस्तु में देखते हो, एक धातु में देखते हो, और तब तुम्हें लगता है कि हम मंदिर में जाएंगे तो परमात्मा का बनेंगे, घर में रहेंगे तो परमात्मा का नहीं बनेंगे, है ना। इस परिच्छिन्नता का, इस भाव का त्याग करना होगा, परमात्मा को सर्वत्र जानना होगा। जब परमात्मा को सर्वत्र जानोगे तो परमात्मा सर्वत्र दिखेगा, और जब सर्वत्र परमात्मा दिखेगा तो आप परमात्मा का आपको बनने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए तो हमने कहा कि परमात्मा को जानना भी चाहिए, समझिए ना। बिना जाने भजन नहीं होता है, इसलिए भजन में ज्ञान आवश्यक है। और परमात्मा को जानने का अर्थ होता है तात्विक जानना। परमात्मा का जो तात्विक रूप है, जब तक उस तात्विक रूप का आपको बोध नहीं होगा, तब तक परमात्मा को आप जान नहीं पाओगे, भले मान पाओगे, मान सकते हो परंतु जान नहीं सकते। मानने में और जानने में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान रखो। मान्यता सत्य होती ही नहीं है, बोध सत्य होता है। मान्यता सत्य नहीं होती है, क्योंकि मान्यता मन की होती है, और मन में हमेशा दुविधा रहती है, संकल्प विकल्पात्मकम मन, ये मन का स्वरूप है। मन एक जैसा रह नहीं सकता है, कभी मानोगे कभी नहीं मानोगे, है ना। तो कभी मानोगे और कभी नहीं मानोगे तो दोनों भी झूठा हो जाएगा कि नहीं होगा, हा? कभी हां कह रहे कभी ना कह रहे तो दूसरा आदमी आपको क्या कहेगा? बोलो, क्या सत्य कहेगा? झूठा ही कहेगा। इसी प्रकार से मन की मान्यता जो है वो कभी भी सत्य नहीं हो सकती है, परंतु बुद्धि में जो बोध होता है वो बोध सत्य होता है। और जानने का मतलब होता है बोध। बुद्धि में आपको अनुभव होना चाहिए। जैसे आपको आपने चेतनता का अनुभव है कि मैं चेतन हूं, है ना? क्या आपको अपना जड़ता का अनुभव होता है? शरीर की जड़ता का अनुभव आप कर सकते हो, परंतु शरीर की जड़ता का अनुभव करने वाला चेतन ही होगा कि नहीं होगा? तो जैसा आप अपनी चेतनता का अनुभव कर सकते हो, ऐसा ही परमात्मा का भी आपको अपने में अनुभव करना होगा। भिन्न रूप से नहीं, अभिन्न रूप से अनुभव करना होगा। और जब अभिन्न रूप से आप अनुभव करोगे तो परमात्मा के साथ एक हो जाओगे, फिर आपका प्रत्येक कर्म भजन बन जाएगा। क्या भजन का अर्थ केवल हाथ में माला लेकर के माला घुमाने का अर्थ भजन नहीं है, ना हाथ में मंजिरा लेकर के जोर जोर से बजाना भजन है, और ना राग रागिनियां गाना भजन है। संगीत है, भजन नहीं है, ध्यान रखना। संगीत को भजन मत समझो और भजन को संगीत मत बनाओ। संगीत जो होता है वो वाणी का होता है, भजन जो होता है वो बुद्धि का होता है, ध्यान रखो। समझ रहे ना? संगीत जो होगा वो वाणी का होगा, इंद्रियों का होगा। नृत्य भी संगीत है, परंतु संगीतकार उसी को ही भजन समझते हैं। नहीं, भजन बुद्धि का होता है, समझे ना? मैंने कहा भजनम नाम रसनम। भजन का अर्थ होता है रस, रस। रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा तृप्त भवति। वो रस जब प्राप्त होता है तब जीवन में तृप्ति आती है, ध्यान रखो। भक्ति जीवन में आ जाती है तो नारद जी कहते यम लब्ध्वा पुमान तृप्तो भवति। ये भक्ति का फल है। भक्ति जीवन में आ जाती है तो तृप्ति हो जाती है। पूर्ण केला पूर्ण केला पूर्ण केला मनोरथ। तुकाराम कहते कि आप हम पूर्ण हो गए। कामना ही झालो पाई रिकामा। अब सब इच्छाएं समाप्त हो गई है, खाली हो गए। तृप्ति का अर्थ होता है खाली हो जाना, इच्छाओं से मुक्त हो जाना, कामनाओं से मुक्त हो जाना। इसका नाम भजन है, ये भक्ति है। भजन भक्ति का मतलब ये नहीं है कि संगीत, भजन संगीत नहीं है। भजन बोध है, बोध, समझे? बुद्धि में। और तब भजन होता है जब बुद्धि समर्पित होती है। मई बुद्धिम निवेश है, भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? मई बुद्धिम निवेश है, तुम मन को बुद्धि को मन को मेरे में लगा दो, अर्थात मेरे को समर्पण कर। मैयासक्त मनपार्थ, हे अर्जुन तुम अपने मन को मेरे में आसक्त करो। मन परमात्मा में आसक्त हो जाए, बुद्धि परमात्मा में प्रविष्ट हो जाए, तब भजन होता है, ध्यान रखो। भला ये संगीत हो, संगीत संगीत को भजन मत समझो और इसमें मोहित मत हो, भजन करने का प्रयास करो। परंतु हम तो संगीत को ही, यहां जब भजन संध्या होती है ना तो हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं होती है, खचाखच भर देते, क्योंकि वहां रस मिलता है, श्रृंगार रस मिलता है, श्रृंगार रस बड़ा आनंद आता है, भले डोलने लगते हैं, है ना। परंतु क्या वो डोलना, वो डोलने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? नहीं। ध्यान रखो, थोड़ा उठो, जगो, ये प्रेमपुरी अध्यात्म भवन है, समझे ना, संगीत भवन नहीं है, परंतु संगीत भवन बनाने जा रहे हैं अभी। यहां जो अध्यात्म का जो चिंतन चलना चाहिए वो न चल करके अभी दूसरा ही चिंतन हो रहा है, दुर्भाग्य है। देखो, भजन की ओर चलो, भजन भक्ति है और भक्ति ही मुक्ति है, ध्यान रखो। क्या? भजन ही मुक्ति है, मुखी नाम हाथी मोक्ष, ऐसी साक्ष्य बहुताज जी कहा है। परमात्मा का नाम मुख में आ जाए तो हाथ में मोक्ष आना चाहिए, मोक्ष, समझना, अर्थात बंधन से आपके मन में ये होना चाहिए कि हम निर्बंध है, निर्बंध, निर्भय है, निर्भय, और तब निर्भय हो जाते हैं कि बुद्धि जब परमात्मा में समर्पित हो जाती है, बुद्धि का परमात्मा में प्रवेश हो जाता है तो मैं निर्भय, मन निर्भय बन जाता है। क्या? बुद्धि यदि संसार में हो, बुद्धि यदि द्वैत में हो, बुद्धि यदि भोग में हो तो तुम कभी भी भय से मुक्त नहीं हो सकते हैं, तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। इसलिए मन में शांति चाहते हो तो बुद्धि में परमात्मा को बसाओ और बुद्धि परमात्मा में लगाओ, भोग में मत लगाओ, आपका जीवन बुद्धि के ऊपर निर्भर है। क्या? लगाना किसके तरफ है? वो आपके ऊपर है, आपका पुरुषार्थ पर है। आप कहां रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, कैसे सोते हो, किस समय उठते हो, किस समय जगते हो, वो कोई प्रश्न नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ वही है कि आपकी बुद्धि कहां है, सावधानी वहां होना चाहिए, समझे ना। मुझे एक आदमी आया, कहा कि स्वामी जी आपकी नित्य दिनचर्या क्या है? हमने कहा कि कौन सी दिनचर्या बताना है भाई? कहा कि आप सुबह से उठते रात तक क्या क्या करते हो? हमने कहा कर्म बताना है तुम्हें, क्या क्या करना है। लोग दिनचर्या पूछते हैं, है ना, इस दिनचर्या का कोई अर्थ नहीं है, भक्ति में, परमार्थ में, अध्यात्म में इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तुम क्या खाते हो, कैसे रहते हो, नंगे रहते हो या कपड़े पहनते हो, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तुम रोटी खाते हो कि भूखे रहते हो, इसका भी कोई महत्व नहीं। तुम्हारा बुद्धि क्या कर रही है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, ये दो वस्तु परमात्मा को चाहिए। और वो यदि तुम परमात्मा को देते हैं तो तुम परमात्मा का बन सकते हो। भगवान ने जगह जगह अर्जुन को यही बात बताई है, है ना। गीता सुनते आ रहे हो, गीता पढ़ते आ रहे हो, परंतु करते क्या हो? आपको क्या किसी ने कहा कि आप तो भगवान हैं तो तुम्हें बड़ा डर लग जाता है ना? हाँ तुम्हें गोविंद राम है श्याम राव है कहे तो तू बड़ी छाती फूल जाती है, परंतु तुम्हें भगवान कहता तो मैं डर लगता है, ब्रह्म कहे तो फिर तो बातें ही क्या है, फिर तो क्यों। इसी से पता चल जाता है कि तुम हो कहां, तुम्हारी स्थिति क्या है, इसी से पता लग जाती है। परमात्मा का कोई तुम्हें कहता तो तुम्हें डर लगता है, संसार का कोई कहता तो बड़े उछलते हो, है ना। ये तुम्हारी मानसिक बौद्धिक दरिद्रता है। क्या है? तुकामने संकोचो निकारे झाला शिलान घेई अपोषण ब्रह्मांडाचे। इस दरिद्रता को छोड़ो, परमात्मा का बनोगे तो ही विश्वचि माझे घर, ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, फिर उसको कोई कमी नहीं रहता है। तुका मने अम्मी त्रैलोकी चे राजे, शिवाजी को फटकार दिया था तुकाराम ने, दिवट्या छत्री घोड़े हे तो बजासी न पड़े, कहा कि तुमने ये तो दिया ये हमारे क्या काम का, हमारे तो कुछ भी जरूरत नहीं है इसकी, तुम हमें क्या गरीब समझते हो। नहीं, तुका मने अम्मी त्रैलोकी चे राजे, तू तो एक महाराष्ट्र का राजा है, परंतु हम तो तीनों लोक के राजे हैं। देखो अधिकार किससे, भक्ति से। इसलिए परमात्मा को देना हो तो धन मत दो, परमात्मा को देना हो तो माला फूलमाला मत चढ़ाओ, परमात्मा को देना हो तो मन के पुष्पों को दो, मन को समर्पित करो, बुद्धि को अर्पण करो। बुद्धि और मन परमात्मा चाहते हैं, और ये तुम्हारा परमात्मा के साथ इसका संबंध जुड़ जाए तब जो भी होगा वो भजन होगा, भजन रस बन जाएगा। रस क्या? भजनम नाम रसनम कहा है, भजन का अर्थ होता है रस, और रस कौन सा? ये नवरस नहीं, ब्रह्म रस। सेवी तो हा रस बाटी तो आनी का घ्यारी हो न का रान भरी। तुकाराम ने कहा है कि जिस रस का मैं पान करता हूं वही रस तुम्हें भी दे सकता हूं, तुम भी इसका पान करो, ब्रह्म रस। ब्रह्म रस रसो वही सह, श्रुति कहती है कि परमात्मा रस है, परमात्मा रस जो ये रस है ना, ये रस को ही सगुण साकार कहा है, परमात्मा का यही सगुण साकार रूप है, ध्यान रखो। ये रस जो है ये साकार है, गुण है, गुण। परमात्मा गुण वाला बन गया। ये रस यदि आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन में तृप्ति आ जाती है, आपके जीवन में पूर्णता आ जाती है, आपके जीवन में जीवन की सफलता हो जाती है, आपका जीवन कृतकृत्य होता है, ध्यान रखो। अन्यथा कुछ नहीं है, टाली पीटने से कुछ नहीं होता है। इसलिए मन को हम कैसा परमात्मा को दें, कठिन नहीं है क्या? तुम अपने मन को परमात्मा को नहीं दे सकते हो तो परमात्मा को मन में लाओ, चलेगा। तुम परमात्मा में मन को लगाओ तब भी मन परमात्मा बनेगा, और परमात्मा को मन में लाओगे तब भी मन परमात्मा बनेगा। मन ही राम झाले, मन ही राम झाले, प्रवृत्ति ग्रासुनी कैसे निवृत्ति सी आले। मन को यदि परमात्मा में लगाओगे तो मन परमात्मा बन जाएगा, मन परमात्मा बन जाएगा तो फल क्या है? मन की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जहां प्रवृत्ति की समाप्ति है वही तृप्ति है, ध्यान रखो। उस तृप्ति का नाम ही निवृत्ति है, उस तृप्ति का नाम ही पूर्णता है, और प्रवृत्ति का अर्थ ही होता है अपूर्णता। प्रवृत्ति का नाम ही होता है दुख, और प्रवृत्ति समाप्त होने का अर्थ ही होता है सुख आनंद। मन की प्रवृत्ति समाप्त हो गई तो बुद्धि आनंद से भर जाती है, बुद्धि तृप्त हो जाती है, बुद्धि पूर्ण हो जाती है, और बुद्धि पूर्ण हो गए तो आपका जीवन पूर्ण हो जाता है, फिर अपूर्णता नहीं रहती है, फिर जन्म मृत्यु नहीं है, उसी का नाम तो मुक्ति है। मुक्ति कोई गांव नहीं है, वैकुंठ जैसे आप लोग समझते हैं कि आकाश में कोई वैकुंठ टंगा हुआ होगा, है ना, जैसे तारे टंगे हुए हैं ना, तारों को देखते हैं कि नहीं, ऐसा ही आप कल्पना करते हैं कि ऐसा ही कहीं वैकुंठ भी होगा, वहां मुझे जाना है, ये कल्पना है। सब लोग आपके अंदर है, जो ब्रह्मांड में है वो सब पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए उसकी कल्पना छोड़ो, अपने अंदर खोजो। बुद्धि यदि पूर्ण हो गई तो आपका जीवन पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया आपका जन्म मृत्यु। मोक्ष मरने के बाद नहीं होता है, हां स्वर्ग मरने के बाद होता है ऐसा लोग कहते हैं, देखा किसी ने भी नहीं है, है ना, देखा है किसी ने स्वर्ग? स्वर्ग स्वर्ग देखने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मरना होता है, है ना, परंतु मुक्त होने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, मरना ही समाप्त होता है। कितना अंतर है, मुक्त होने के लिए मरना नहीं होता है, मृत्यु ही समाप्त होती है। मरण माझे मरुनी गेले, तुकाराम कहते हैं, मदते केले अमर, मेरी मृत्यु ही क्या हो गई, मर गई। मृत्यु मरने का अर्थ होता है प्रवृत्ति की समाप्ति, ध्यान रखो। क्या मृत्यु की मृत्यु की ही समाप्ति का अर्थ होता है प्रवृत्ति की समाप्ति, और प्रवृत्ति की समाप्ति का अर्थ ही होता है भक्ति, समझ रही ना, और भक्ति का अर्थ ही होता है तृप्ति, पूर्णता, मुक्ति। या भक्ति होगी वही मुक्ति होगी, मुक्ति भक्ति को छोड़कर के रह नहीं सकती है, समझे ना। इसलिए हमें सावधानी रखना है, बहुत जीवन चला गया, थोड़ा रहा है, अब थोड़े जीवन में हमें ऐसा अभ्यास करना है हम भोग की ओर न जाए, योग की ओर जाए। इसका अर्थ नहीं कि योगा की क्लास में आ जाना है, योग योगा अलग है, योग अलग है, समझ, ये योगा है, हाथ पैर की कसरत है, शरीर का व्यायाम है, योग बाहर नहीं होता, योग अंदर होता है, समझ, परमात्मा का और बुद्धि का जो संबंध जुड़ जाए उसका नाम है संयोग, सम्यक योग है वो, सम्यक योग, बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ने का अभ्यास करो, मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करो, भोगों में लगाने से नहीं, सुविधाओं में लगाने से सुखी नहीं हो जाओगे, सुविधाएं सुख नहीं देती है, सुविधा केवल सुख भासवाती है, देती नहीं है, सुविधाओं से कोई भी आज तक सुखी नहीं हुआ है, और ना हो सकता है, तुकाराम ने या इसमें नामदेव का एक प्रमाण है, 18 भार वनस्पति फली फुली ओळती, 22 पोखरणी नदी गंगा वहाती, जा घरी कुल स्त्रिया राज्य राजीव संपत्ति, हे सुख सांडोनिया कासिया योग सेविती। ये सुविधाएं हैं, ये योग नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य है, आज का जो ये शिवरात्रि का महापर्व है, अपने मन को कल्याण के मार्ग पर ले चलाओ, बुद्धि को उसमें लगाओ, तो हमारा कल्याण है। अर्थात मन को और बुद्धि को, बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान हो और मन में परमात्मा का भजन हो। क्या? अर्थात मन में परमात्मा का चिंतन हो और बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान हो, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। क्या? बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान हो, और ये ध्यान रखो, ज्ञान परिच्छिन्न नहीं होता है, ज्ञान कोई रूप वाला नहीं होता है, गुण वाला नहीं होता है, अंदर का निश्चय होता है, निश्चय अनुभव होता है, अनुभव। बुद्धि में परमात्मा का अनुभव होना चाहिए और मन में परमात्मा का भजन होना चाहिए। ये दोनों की एकता हो जाए तो इंद्रिया अपने आप ही उनके पीछे चलती है। इंद्रिया तो गुलाम है, मन की गुलाम है, मन जहां चलेगा वहां इंद्रिया भी अपने आप जाएगी। मन में यदि परमात्मा का भजन होता तो इंद्रिया परमात्मा को ही देख सकती है, परमात्मा को ही सुन सकती है, परमात्मा को ही चख सकती है, ये ध्यान रखो। और मन में यदि परमात्मा का चिंतन नहीं है, परमात्मा का भजन नहीं है, तो इंद्रिया भोगों का, विषयों का सेवन करती है। आपको अनुभव करना होगा। काय खातो आम्मी कासिया सांगाते लागते हैं मुखी कया नैनो कैसे। अर्थात मन में यदि भजन है तो बाहर हम क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे इसका कोई अर्थ नहीं होता है, समझ ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में भजन को लाओ और अपना कल्याण करो। मन में भजन रखो, बुद्धि में ज्ञान रखो, ये दोनों साथ हो जाए तो निश्चित हमारे जीवन में तृप्ति मिलेगी, पूर्णता मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा और जीवन में सफलता होगी।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।